हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। युग कृषा के साथ होटल रूम में था। वो कृषा के साथ तब तक जयपुर में रुकने वाला था जब तक मलिक मीरा के बारे में सब कुछ पता नहीं लगा लेता। कृषा की जिद पर युग को मीरा को लंदन लेकर जाना पड़ रहा था, लेकिन वो उसके बारे में पता लगाए बिना उसे लंदन नहीं लेकर जाना चाहता था। मीरा मलिक के साथ रूम शेयर कर रही थी जबकि कृषा युग के साथ थी। रात को कृषा और युग में अच्छी खासी बहस हो गई थी, जिसके बाद कृषा काउच पर सो रही थी और युग बेड पर था। अगली सुबह कृषा युग से पहले उठ गई थी। सोफे पर सोने की वजह से उसकी कमर में दर्द हो रहा था। कृषा अपनी कमर पर हाथ लगाकर बैठी थी। उसने धीरे से कहा, इसने मुझे कम दर्द दिए हैं क्या जो अब इस कमर में भी दर्द होने लगा? रात को मुझे एटीट्यूड दिखा रहा था ना, अब आने दो इसे, मैं बात भी नहीं करूंगी, फिर पता चलेगा। ऐसा करती हूँ, इससे पहले ही उठकर बाहर चली जाती हूँ, वरने सुबह सुबह इसका सड़ा हुआ मुंह देखकर फिर से मेरा मूड खराब हो जाएगा। कृषा काउच पर से उठी, ना चाहते हुए भी उसकी नज़र युग पर चली गई। कृषा युग के पास गई तो वो गहरी नींद में सोया हुआ था। कृषा युग के चेहरे पर झुकी और उसके गाल पर हाथ रखकर उसे प्यार से देखने लगी। वो धीरे से बोली, तुम बहुत बुरे हो युग राना, बट स्टिल आई लव यू, कहकर कृषा ने युग के होठों पर अपने होठ रख दिए। युग को एक छोटा सा किस करने के बाद कृषा ने उसकी सांसों को महसूस किया और फिर उससे दूर हो गई। हालांकि उसके लिए ऐसा करना थोड़ा मुश्किल था। कृषा ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और बाथरूम में चली गई। वहीं उसके जाते ही युग ने आंखें खोली। क्या लगता है तुम्हें, तुम मेरे इतने करीब आओगी और मैं नींद में रहूंगा कृष? हाँ, मैं बुरा हूँ, बट तुम्हारे पास मुझे छोड़कर जाने का ऑप्शन नहीं है। यू हैव टू लव मी, युग ने मन ही मन बड़बड़ाकर कहा और फिर से सोने की कोशिश करने लगा। कृषा नहाकर तैयार हो चुकी थी। कपड़े नहीं होने की वजह से उसने रात वाली साड़ी ही वापस पहन ली थी। कृषा बाथरूम से बाहर निकली तो युग अभी भी सोया हुआ था। इस बार वो युग के पास नहीं गई और सीधा कमरे से बाहर चली गई। कृषा के बाहर निकलते ही युग ने आंखें खोली और अपना ब्लूटूथ ऑन करके कहा, मलिक अभी किसी मॉल में जाओ और हम सबके लिए शॉपिंग करके ले आओ। कृष के कम्फर्ट के हिसाब से हर एक चीज़ होनी चाहिए, मीरा का भी देख लेना। मलिक ने उसकी बात पर हामी भरी और कॉल कट कर दिया। मलिक ने बाहर जाने से पहले बेड की तरफ देखा तो मीरा काफी आराम से सोई हुई थी। वो कल रात काउच पर सो रहा था। मीरा को वहीं पर छोड़कर मलिक ने जब दरवाजा खोला तो सामने कृषा खड़ी थी। मलिक ने खुद से ही दरवाजा खोला था तो कृषा ने हैरानी से पूछा, कहाँ जा रहे हो तुम इसे अकेला छोड़कर? मुझे सर ने कुछ पता लगाने के लिए कहा है, बस उसी के लिए जा रहा हूँ, वो लड़की सो रही है, आपको कुछ चाहिए तो बता दीजिए, मलिक ने काफ़ी पोलाइटली पूछा, जिस पर कृषा ने नामे सिर हिला दिया। मलिक वहां से चला गया। कृषा अंदर आई और मीरा को जगाने लगी, क्या कर रही हो तुम, अब तक सो रही हो, तुम्हें जल्दी उठकर एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि तुम्हें डिलीवरी टाइम में प्रॉब्लम ना हो। कृषा की तेज़ आवाज़ सुनकर मीरा जल्दी से उठ गई। वो आँख मसलते हुए उसे देखते हुए बोली, हमें भी देर तक सोने की आदत नहीं है, लेकिन रात को देर से सोने की वजह से आँख नहीं खुली। आपको इन सब के बारे में कैसे पता है, आपके बच्चे हैं क्या? कृषा ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और मीरा को पहले ही समझाते हुए कहा, मेरे बच्चे नहीं हैं और तुम प्लीज़ युग के सामने बार बार बच्चे का जिक्र मत किया करो, उसे गुस्सा आता है, वो तुम पर गुस्सा होता है और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ तो तुम्हारा गुस्सा मुझ पर उतरता है। चलो जल्दी से फ्रेश होकर आओ, मैं खाने के लिए कुछ मंगाती हूँ। मीरा ने उसकी बात पर हामी भरी। उसे समझ तो नहीं आया कि कृषा ने उसे किस वजह से ऐसा कहा है, पर फिर भी उसने कृषा की बात मान ली। मीरा बाथरूम में गई तभी रूम के इंटरकॉम पर एक कॉल आया। कृषा ने कॉल रिसीव किया। वो कुछ कहती उससे पहले सामने से युग की सर्द आवाज आई, अभी इसी वक्त रूम में पहुंचो, मेरे अलावा किसी और की केयर करने के बारे में तुम सोच भी कैसे सकती हो? कृषा रात की वजह से युग पर गुस्सा थी। वो चिढ़ते हुए बोली, मैं रूम में नहीं आ रही हूँ, तुम्हारा जो काम है तुम खुद से कर लो, तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है, रात को साफ पता चल रहा था तो अब मैं तुम्हारे सामने भी नहीं आऊंगी। इतना कहकर कृषा ने कॉल कट कर दिया। उसकी बातें युग को गुस्सा दिला सकती है ये जानते हुए भी कृषा ने युग के साथ बदतमीजी से बात की। युग से बात करने के बाद कृषा ने अपने और मीरा के लिए ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया। लगभग 10 मिनट बाद मीरा कमरे से बाहर आ चुकी थी। कृषा उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, ये लड़का है या लड़की? हमें कैसे पता होगा, बच्चा पैदा होने से पहले थोड़ी ना पता चलता है लड़का है या लड़की, मीरा ने मुस्कुराकर कहा। कृषा ने उसकी बात पर हामी में सिर हिलाकर कहा, हाँ इंडिया में नहीं पता चलता, लेकिन हम किसी और कंट्री में हो तो हमें पता चल सकता है। कृषा मीरा से बात कर ही रही थी कि तभी कमरे का दरवाजा झटके से खुला। सामने युग था। उसने गुस्से में कृषा की बाजू पकड़ी और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें मुझसे बदतमीजी करने का हक नहीं है कृष, और ये हक मैं तुम्हें कभी नहीं देने वाला, चुपचाप कमरे में चलो। लेकिन मीरा यहाँ अकेली, कृषा वहां रुकने के लिए बहाना दे रही थी। तभी उसने देखा मलिक अंदर आ गया था। युग की इस हरकत पर मीरा घबरा गई थी। मलिक के वहां आते ही युग ने कृषा का हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती अपने रूम में ले जाने लगा। उसके जाते ही मीरा ने बड़बड़ा कर कहा, अजीब आदमी है, सिर्फ दिखने में अच्छा होने से कुछ नहीं होता। कितनी प्यारी बीवी है, फिर भी जब देखो गुस्सा करता रहता है। इसकी जगह हम होते तो अब तक इसे छोड़कर चले जाते। जितनी जरूरत है उतना ही बोला करो, मलिक ने सख्त लहजे में कहा, जिस पर मीरा चुप हो गई। कुछ ही देर में कृषा का मंगाया हुआ ब्रेकफास्ट आ गया था, जो अब मलिक और मीरा साथ में कर रहे थे। वहीं ऊपर युग कृषा को लेकर रूम में पहुंचा। युग के इस तरह बदतमीजी करने की वजह से कृषा उस पर गुस्सा थी। रूम में आते ही युग ने दरवाजा बंद किया और कृषा का हाथ छोड़ दिया। कृषा उसकी तरफ गुस्से में देख रही थी। मुझे ऐसे मत देखो, तुम्हारी इन नजरों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे से मेरे अलावा तुम्हारे मुंह पर किसी का नाम नहीं होना चाहिए, युग कृषा की तरफ देखकर कोल्ड वॉइस में बोला। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जब मैं पास आना चाहती हूँ तब तुम मेरे करीब नहीं आते हो, और जब मैं दूर जा रही हूँ तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। आखिर तुम चाहते क्या हो, बता क्यों नहीं देते? कृषा युग पर चिल्ला कर बोली। कृषा की बात का जवाब देने से पहले युग उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो कृषा के बिल्कुल करीब आया और इसे कमर से पकड़कर अपने पास कर लिया। वो कृषा की आंखों में देखते हुए बोला, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम चाहिए, और अपनी आंखों के सामने। जब तक मुझे उस लड़की पर पूरी तरह यकीन नहीं हो जाता तुम उससे नहीं मिलोगी, लेकिन वो मुझे अच्छी लगी, मुझे उसके आसपास रहना और बात करना पसंद है, कृषा ने सीधे सीधे जवाब दिया। उसकी बात सुनकर युग के चेहरे पर गुस्से के भाव थे। उसने कृषा को खुद से दूर किया और सर्द लहजे में कहा, तुम उससे इस वजह से अटैच हो रही हो क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। मुझे सब अच्छे से समझ आ रहा है। आगे से हमारी प्राइवेट लाइफ से जुड़ी बात तुम किसी से शेयर नहीं करोगी, ना बच्चों के बारे में, ना शादी के बारे में, और ना ही इस बारे में कि मैं तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करता हूँ।
अपनी बात कहकर युग वहाँ बाथरूम में चला गया, जबकि कृषा हैरानी से युग की तरफ देख रही थी। आज भी उसके बिना बोले युग को सब समझ आ जाता था। युग की बात सही थी, कृषा की आंखों के सामने मीरा ही घूम रही थी। अचानक उसके मुंह से निकला, वो लड़का था। इसी के साथ कृषा की आंखों से आंसू का कतरा बह गया। कृषा से बहस करने के बाद युग बाथरूम में चला गया। उसे कृषा का इस तरह मीरा के क्लोज आना पसंद नहीं आ रहा था, और वो इसका कारण भी अच्छे से जानता था। युग के बाथरूम में जाने के बाद कृषा वहीं बेड पर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे और वो धीरे से बोली, युग ठीक कह रहा है, मैं मीरा के आसपास इसीलिए रहना चाहती हूँ ताकि उसके बच्चे को पैदा होते हुए देख सकूं। युग बाथरूम से बाहर आ गया था, उसने कृषा की बात सुन ली थी। कृषा रो रही थी, इसीलिए युग गुस्से में बात करने के बजाय नॉर्मल तरीके से उसके पास आया और कृषा को अपने सीने से लगा लिया। युग उसे सहलाते हुए बोला, चलो देर से ही सही, तुम्हें मेरी बात समझ तो आई। तुम्हारी वजह से मैंने उस लड़की को जिंदा छोड़ा था, वरना राणावत ने तुम्हारे साथ जो भी किया था उसके बाद मैं उस लड़की को किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं देखना चाहता था। कृषा युग से अलग हो गई और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, राणावत ने जो किया उसमें उस बच्चे की कोई गलती नहीं है युग, जो गुनाह उसने किया वो तुम्हें करना जरूरी नहीं है। कृषा की बात सुनकर युग ने आईज रोल करके कहा, ठीक है अब लेक्चर मत दो, मैं सुनने के मूड में भी नहीं हूँ, मैंने मलिक से कपड़े मंगवा लिए हैं, चेंज कर लो। कृषा ने उसकी बात पर हामी भरी। युग उससे अच्छे से बात कर रहा था इसलिए कृषा ने भी बहस नहीं की। उसने वहां रखे बैग्स को खोलकर देखा तो उसमें साड़ी ही रखी हुई थी। कृषा साड़ी को देखकर हैरानी से बोली, लेकिन मेरा साड़ी पहनने का मन नहीं है, इसे हैंडल करना मुश्किल होता है। लेकिन मेरा तो तुम्हें साड़ी में देखने का मन है ना, युग ने कंधे उचकाकर जवाब दिया। कल रात की वजह से कृषा काफी अपसेट थी इसीलिए युग उससे अच्छे से बिहेव कर रहा था। कृषा ने साड़ी ली और बाथरूम में चली गई। कुछ ही देर में वो साड़ी पहनकर बाहर आ गई थी। कृषा युग के पास आई और शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली, मुझे साड़ी में देखने का मन है तो कुछ और भी करने का मन कर रहा होगा ना युग राणा? बिल्कुल नहीं कृषा सिंघानिया, युग ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, मैं अभी भी तुमसे नाराज हूँ, जब तक नाराजगी दूर नहीं हो जाती तब तक कितना भी सेड्यूस कर लो तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। और मैं तुम्हें सेड्यूस क्यों करूंगी? कृषा ने सिर हिलाकर कहा, लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है कि मैं तुम्हारे करीब आना चाहती हूँ। अपनी बात कहकर कृषा वहां से जाने को हुई, तभी युग ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। युग ने कृषा के कमर पर उंगलियां घुमाते हुए कहा, रियली क्रिश, तुम्हें मेरे पास नहीं आना तो सुबह मेरे उठने से पहले किस खुशी में मुझे इतने प्यार से किस करके गई थी? वो मैं तुम्हारे पास नहीं आना चाहती थी, तुम सोते हुए क्यूट लग रहे थे तो किस कर लिया, कृषा हड़बड़ाते हुए इधर उधर देखते हुए बोली। जब कोई हमें क्यूट लगता है तो हम उसके फोरहेड पर किस करते हैं या फिर चीक्स पर, मुझे याद है वो किस मेरे लिप्स पर किया गया था, युग ने आगे कहा। कृषा के पास युग के सवालों का कोई जवाब नहीं था, उसका चेहरा लाल हो रहा था। युग ने अभी भी कृषा को पकड़ रखा था। उसने कृषा के चेहरे को पकड़कर अपने करीब किया और कृषा के होठों को कैप्चर कर लिया। कृषा के लिए हमेशा से युग के एक्शंस काफी अनएक्सपेक्टेड थे। थोड़ी देर पहले वो उससे लड़ाई कर रहा था और अब उसे प्यार से किस करने लगा। युग कृषा को किस करने में बिजी था, तभी उसने किस ब्रेक की और जल्दी से पूछा, तो क्या तुमने मुझे माफ कर दिया युग? तुम्हारी सुई यहीं पर क्यों अटकी हुई है? क्या तुमने मुझे मनाने के लिए कोई एफर्ट्स डाले जो मैं तुम्हें माफ करूंगा? एक किस करने जा रहा था, उसे भी बर्बाद कर दिया, युग ने सिर हिलाकर कहा और फिर कृषा से अलग हो गया। कृषा भी युग के पास वापस नहीं गई। फिर वो दोनों ब्रेकफास्ट के लिए होटल के डाइनिंग एरिया में थे, जहां पर मलिक मीरा को भी लेकर आया था। मलिक को मीरा के बारे में पता लगाने के लिए टाइम चाहिए था, इसीलिए उसने उसे युग के पास छोड़ा और वहां से चला गया। कृषा पूरा दिन वहां रुककर बोर नहीं होना चाहती थी, इसीलिए युग को शॉपिंग के लिए कहा। युग के पास कोई काम नहीं था, इसीलिए वो उसे शॉपिंग कराने के लिए लेकर भी चला गया। पूरा दिन बाहर बिताने के बाद रात के लगभग 9 के करीब युग, कृषा और मीरा वापस होटल लौट रहे थे। मीरा के कहने पर कृषा युग को जयपुर से आउट एरिया में लेकर गई थी। सच में मीरा, तुमने जो जगह बताई थी वो बहुत अच्छी थी। आज से पहले मैंने ये सब कभी नहीं देखा था। गांव की बात ही अलग होती है, कृषा ने पीछे की तरफ देखकर कहा, क्योंकि मीरा बैक सीट पर अकेले बैठी थी। पूरा दिन बाहर बिताने के बाद कृषा काफी खुश थी और युग को उसके चेहरे पर भी खुशी देखनी थी, इसीलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। वो लोग गांव के एक सुनसान एरिया से गुजर रहे थे, तभी कुछ गाड़ियों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। युग ने इस बात को नोटिस कर लिया था। युग ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा ली थी। उसने अपने मन में कहा, मैं लंदन से बाहर हूँ, इस बात का पता हम तीनों के अलावा और किसी को नहीं था, फिर ये अचानक लोग हमारे पीछे कैसे हो सकते हैं। गाड़ी ड्राइव करते हुए युग ने एक बार कृषा की तरफ देखा, जो मुस्कुराते हुए मीरा से बातें करने में लगी हुई थी। एक मोमेंट पर आकर युग को गाड़ी रोकनी पड़ी, क्योंकि उसके सामने एक गाड़ी आकर खड़ी हो चुकी थी। युग के इस तरह झटके से गाड़ी रोकने पर कृषा उससे कुछ कहती, उससे पहले उसकी नज़र साइड मिरर से आसपास की गाड़ियों पर गई। इसी के साथ कृषा समझ चुकी थी कि उन पर एक अनजाना खतरा आ चुका है। ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि आदित्य सिंघानिया ने ही किया था। आदित्य सिंघानिया के आदमियों ने युग की गाड़ी को घेर रखा था, जबकि पीछे की गाड़ी में आदित्य, अमृता और माइक के साथ बैठे हुए थे। फाइनली मुझे मेरी पोती वापस मिल जाएगी और तुम अकेले कुछ नहीं कर पाओगे युग राणा, आदित्य ने इविल स्माइल करके कहा और फिर अपने आदमियों को उन पर अटैक करने का ऑर्डर दे दिया था।